ओम शांति। आप सभी का सबसे पहले तो ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कला और संस्कृति विभाग के इस महासम्मेलन में पधारे हैं, तो मैं समझता हूँ आप सभी स्वस्थ रहते हैं या नहीं रहते हैं? नहीं रहते जब सदा खुश रहते रहते बहुत अच्छी बात है। तो स्वस्थ और खुशनुमा जीवन जीने की कला क्या है, कैसे हम सदा स्वस्थ रह सकते हैं, सदा खुश रह सकते हैं, तो आज हम इसी पे आपसे चर्चा करेंगे। आज की दुनिया में जो मॉडर्न हेल्थ केयर है, जो आज की आधुनिक जो स्वास्थ्य चिकित्सा जो चलती है वो कैसी है, वो सिर्फ वन डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी का इलाज करते हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं भारत में या विदेशों में, अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी देश हैं, उनमें किसी भी सभी कॉलेज में किसके बारे में पढ़ाते हैं? मेडिकल कॉलेज में बॉडी के बारे में पढ़ाते हैं। पहले साल में बॉडी को काटना सिखाते हैं, है ना, एनाटॉमी का सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सारे बॉडी के बारे में बताते हैं। और चाहे आप कितना करें, एमबीबीएस करें, एमडी करें, डीएम करें, एमसीएच करें, विदेशों में जाके एफआरसीपी करें, एफआरसीएस करें, या और भी कोई फेलोशिप्स डिफरेंट दुनिया में है अवेलेबल, किसी भी लेवल पे कितना भी बड़ा आप पढ़ाई कर लीजिए, कहीं भी बॉडी के बारे में ही फर्दर ट्रेनिंग है, मन के बारे में कुछ बताते नहीं है। बताते हैं मन के बारे में, जबकि आज हम जानते हैं कि 95% से अधिक बीमारियां मन से उत्पन्न होती हैं। साइकोसोमेटिक है, साइकोसोमेटिक माना साइकी मीन्स माइंड, साइकी माना मन और फिर सोमा माना बॉडी। तो साइकोसोमेटिक मतलब पहले हमारे मन में आती फिर बॉडी में आती है। एक्सीडेंट भी कैसे होता है, एक्सीडेंट कैसे होता है, एक्सीडेंट पे भी आप कहीं आपका मन पहले कहीं खो जाता है किसी और, फिर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, चाहे आपकी गलती हो चाहे दूसरे वाली गलती हो, पहले मन से ही गलती होती है ना। नहीं, जुकाम भी बार बार होता है, वो भी क्यों होता है? आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बीमारी से लड़ने की शक्ति क्यों विचारों से कम होती है, नेगेटिव विचार करने की आदत होती है, नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं, तो वो फिर हमारे जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाती है, इसलिए फिर हमें बार बार जुकाम होना, कभी इन्फेक्शन चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, कभी स्किन में इन्फेक्शन, एक्जिमा हो जाना, है ना, बहुत सारी बीमारियां जो है उनका मुख्य कारण क्या है, 95% से अधिक बीमारियों का मुख्य कारण मन है। और किसी भी कॉलेज में मन के बारे में और आत्मा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, राइट? अगर हम देखें WHO सभी जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1945 में यूएनओ का गठन हुआ और 1948 में यूएनओ में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ताकि सारे विश्व में सभी विश्व के देशों को हेल्थ के बारे में बताया जा सके, स्टैंडर्ड्स बताया जा सके कि हेल्थ क्या है, गाइडलाइंस दे सके, क्योंकि सब देश डेवलप नहीं थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देशों में बहुत देश सभी देश बहुत गरीब हो गए थे, काफी ज्यादा काफी लोग मर गए थे, काफी डैमेज हुआ था, तो उसके बाद ताकि एक सारे विश्व में एक इसके बारे में जानकारी मिले, हेल्थ के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे क्या जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में बताया जा सके, वो उसके लिए एक WHO बनाया गया। और इन्होंने 1948 में ही एक डेफिनेशन दी स्वास्थ्य की, वो क्या डेफिनेशन थी, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अर्थात स्वास्थ्य खाली स्वास्थ्य जो है उसमें हम संपूर्ण रूप से शारीरिक रूप से हमारा तन भी स्वस्थ हो, हमारा मन भी स्वस्थ हो, समाज भी स्वस्थ हो, तन मन स्वास्थ्य और साथ साथ समाज भी स्वस्थ हो। ये नहीं मैं तो ठीक हूं सब बाकी घर में सब बीमार है तो भी स्वस्थ कहां है, या समाज में सब बीमार है तो भी ठीक नहीं है। और साथ साथ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तौर पर भी स्वस्थ हो। खाली आज आपको बीमारी नहीं है इसको हम स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। कहले को तो मुझे तो अभी कोई तकलीफ नहीं है कि तो आपको क्या पता मच्छर ने आपको 9 दिन पहले काटा था आज दोपहर में बुखार आने वाला है। कि मच्छर 9 दिन पहले काटता तब आपको बुखार आता है, मलेरिया का टाइफाइड कीटाणु 14 दिन पहले आपके खून में चला जाता है फिर आपको टाइफाइड होता है। हार्ट की आर्टरीज बचपन से ब्लॉक होने लगती है 4-5 साल की उम्र से, और जब 40 साल में 50 साल में जब आपकी वो ब्लॉकेज 70% होती है तो आपको छाती में भारीपन फील होता है। ब्लड प्रेशर के जीन जन्म से होते हैं, डायबिटीज के जीन माँ बाप से मिलते हैं, है ना। बहुत सारी बीमारी को जीन माता पिता से, किस दिन होंगे पता लगेगा आपको क्या, किस दिन बीमारी आएगी, उसका आज ही आने वाली हो, अभी 15 मिनट के बाद आने वाली हो, पता है क्या। जब किसी को हार्ट अटैक आता है पहले मैसेज आता है क्या मोबाइल पे कि मैं आपके पास इतने बजे पहुंच रहा हूं, ऐसा है क्या। आना चाहिए, आज भगवान को मैसेज दे देना आप, ठीक है, कि भाई बिना पूछे हार्ट अटैक नहीं आए, है ना, नहीं, ताकि हम लोग पहले से अस्पताल में एडमिट हो जाएं हार्ट अटैक आने से पहले। नहीं, अगर मैसेज आने शुरू हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना, किसी का मैसेज किसी और के पास चला गया बाई चांस, तो जिसके पास आएगा उसको हार्ट अटैक पहले नहीं आना हो तो भी आ जाएगा, नहीं नहीं ऐसा होगा। तो इसी WHO ने प्लानिंग किया था कि हम 2000 तक सबको स्वस्थ बना देंगे, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080। 2000 तो आ गया ना, पूरा हो गया, अभी बाकी है 2000 तो पूरा हो, 14 साल होने वाले ना, तो हम हेल्दी बन गए सभी, बनेंगे नहीं बने, क्योंकि 1977 में प्लान किया गया था एक अल्माटा नाम की जगह कजाकिस्तान में, वहां पर ये 200 देशों के हेल्थ प्लानर वहां बैठे थे और बकायदा सबने मिलकर प्लान किया था कि हम अगले 5 साल में ये करेंगे, फिर 5 साल में ये करेंगे, फिर 5 साल में ये करेंगे, सभी देशों के सभी लोग सभी स्वस्थ बन जाएं, एटलीस्ट इतने स्वस्थ बन जाएं कि सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर अपने पर स्वयं पर निर्भर हो सके, किसी की तरफ देखना ना पड़े। अब आदमी बीमार हो जाए तो दूसरे पे देखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये एटलीस्ट कोशिश की गई थी। जबकि सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट क्या हुआ हमारा, आज बीमारी का क्या हालत है, अगर हम देखें आज प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हेल्दी लिविंग क्या है, फिजिकल हेल्थ शरीर की हेल्थ कैसी है आज, हार्ट डिजीज नंबर 1 है आज, नंबर 1 साइलेंट किलर है वर्ल्ड में, है ना, फिर लंग डिजीज फेफड़े की बीमारियां, अस्थमा और स्मोकिंग की वजह से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, स्ट्रोक पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, डायरिया कितना कॉमन है, चेस्ट इन्फेक्शन फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, टीबी, न्यू बॉर्न डेथ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, और सुसाइड्स आत्महत्या 8वां कॉज है। ये 10 बड़े कॉज मैंने लिखे हैं जो वर्ल्ड में नंबर 1, 2013 की रिपोर्ट है, वर्ल्ड के पहले 10 बीमारियों के कारण, मरने के कारण, ठीक है, सुसाइड्स, रोड एक्सीडेंट और डायबिटीज 10वां कारण है। तो आज सारे विश्व में ये 10 महामारियां फैली हुई हैं, मतलब बड़े रूप में ना, और 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। 100 लोगों को अगर किसी भी शहर में हम ऐसे 100 लोगों को ले लें, एवरेज छांट लें, यंग लोगों को, यंग या मतलब बीच में मिक्स, यंग भी, मिडिल एज भी, ओल्ड भी, तो देखने में आता है कि 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, कि 100 में से 40 लोग तो मोटे हैं, 30 लोग को हाई ब्लड प्रेशर है, 15% को हार्ट की बीमारी है, 25% लोगों को एसिडिटी की बीमारी है, 20% लोगों की हड्डियां खराब है, घुटने, कमर, गर्दन, हड्डियां खोखली हो जाती है ना, स्पेशली माताओं को 50 साल की उम्र के बाद 50% माताओं को उनकी बोन्स खराब हो जाती है, जब हार्मोन्स की सपोर्ट खत्म हो जाती है तो हार्मोन्स, हमारी हड्डियां खोखली, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना, 10% लोगों को चेस्ट की प्रॉब्लम्स, ऐसे अगर देखें 10% लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन, 5% लोगों को कोई ना कोई हार्मोन्स की बीमारी, थायराइड की बीमारी जैसे होती है, 10% लोगों को नाक कान गले की बीमारी है, 10% कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, 10% को सिर में दर्द होती है। तो ऐसे अगर आप एवरेज देखें तो 100 लोगों को 200 बीमारियां होती है, 100 लोगों को 200 बीमारियां। आप जब अपने अंदर चेक करो, अभी आप सबको दो दो बीमारी है नहीं है, सभी चेक करके मुझे बताओ, जिसको नहीं मिली हो मुझे बताना है ना। एवरेज देखो जरा अपने अंदर, सबको दो दो है, सबको आपको नहीं है, है सभी को, जिसको नहीं मिली मुझे बताओ जरा। दो तो लगभग हर एक को मिलेंगी, बाकी दो तो फ्री में मिलती हैं, है ना, बाकी बोनो ऐसे तो बहुत, और किसको पांच पांच भी हैं, छह छह सात सात आठ आठ भी हैं, है नहीं, मोटे होना भी बीमारी है ना। तो और ये देखने में आता कई बार हमको पता नहीं होता मैं बीपी हाई है, शुगर हो गई है, पता नहीं होता, किंतु चेक करो ना, पहली बार चेक कराते तो शुगर हाई निकलती है, बीपी दिखाओ तो बीपी चेक हाई निकलता है। एक बार दिल्ली में क्या हुआ कि स्कूल के बच्चे होते हैं दसवीं और ग्यारहवीं, दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं तीन साल के जो बड़ी स्कूल बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, उनका देखा, उनका सोचा गया कि उनको भी कहीं ऐसे चेक करके देखते हैं बीपी तो नहीं है, इनको कितने परसेंट को बीपी है, हमने सोचा था 2-3% को बीपी होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो आपको आश्चर्य होगा कि जब उनका चेक किया गया 100 बच्चों का, उसमें से 15 को हाई ब्लड प्रेशर था। कितनी उम्र के बच्चे, 15 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक के बच्चे, 15 से 17 साल की उम्र के बच्चे, 100 में से 15 बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर था। तो आज ये हालत है, और डॉक्टर्स पीछे नहीं है, जो आम पॉपुलेशन को जितना ब्लड प्रेशर है ना, डॉक्टर्स को 55% डॉक्टर्स को हाई ब्लड प्रेशर है, 30% को हाई ब्लड प्रेशर आम पॉपुलेशन में होता है, और डॉक्टर्स को कितना होता है, 55% डॉक्टर्स को हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर्स ज्यादा मोटे होते हैं, डॉक्टर्स को ज्यादा बीमारियां हैं, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, है ना। तो डॉक्टर्स आम पॉपुलेशन से भी आगे हैं, नहीं, तो यह हालत है। अब देखो जरा मन की क्या हालत है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, डिप्रेशन। आज देखो समाज के हर वर्ग में, स्कूलों में, कॉलेजों में, बच्चों को, है ना, फिल्म एक्टर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को, मिडिल एज में, सभी क्लासेस में डिप्रेशन, उदासी बढ़ती जा रही है। 10% लोग दवाई खा के रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, वैसे एवरेज में 25% हर चौथा आदमी डिप्रेशन से ग्रसित है आज। इंसोमनिया, नींद ना आना, नींद का ना आना, आज नींद सभी को लगभग 10% लोग तो गोली खा के सोते हैं, गोली खा के भी नींद नहीं आती है। और चिंता कितने लोगों को होती है, आप में से कितने लोग हैं जिनको चिंता कभी नहीं होती, हाथ उठाओ, जिनको कभी चिंता नहीं होती, सच्चे सच्चे दिल पे हाथ रख के उठाना। हा? चिंता सभी को होती है, जो सो रहे हैं उनको नहीं पता लगेगा, सोने वाले हाथ उठाओ, जो सोने वाले हाथ उठाओ, चिंता में सोए पड़े, अरे कलाकार थोड़े सो सकते हैं, कलाकार तो अलर्ट होते हैं। तो चिंता सभी को है ना, देखो आज, और गुस्सा, ऐसे को ऐसे हाथ उठाओ जिन्होंने कभी गुस्सा ना किया हो आज तक, हाथ उठाओ जिन्होंने कभी गुस्सा ना किया हो, सभी को गुस्सा आता है, देखो क्या करें, आना शुरू हो जाते, अच्छी बात, अच्छी। वैसे कलाकारों को गुस्सा नहीं आना चाहिए कभी ना। फिर लालच, लोभ, लोभ भी सभी को है, पैसे का लोभ भले ना हो, खाली पैसे का लोभ नहीं होता, नाम मान शान का लोभ सबको होता है, नाम का, नाम, मेरा नाम हो, मेरा मान होना चाहिए, मेरी शान होनी चाहिए, नहीं लोग मुझे पूछे, नहीं सब लोग मुझे पूछे, पूछ किसकी होती है, हैं? हम बिना पूछ के फिर भी पूछ चाहिए, नहीं देखो इंसान कितनी खूबसूरती है, नहीं
फिर लस्ट है ना, इसके तो किससे आप वो सुनते हैं अखबारों में है ना, टीवी पे सुनते हैं, लस्ट कितनी बढ़ गई है ना इंसान का, कहां तक इंसान गिर गया है, कहां तक मतलब एक इंसानियत हैवानियत में पहुंच गया है ना। फिर ईगो अहंकार सभी के अंदर है, अटैचमेंट मोह सभी के अंदर है, फिर लेजीनेस आलस्य सभी के अंदर है, जहां लगा मौका सो गए, और डर डर सभी के अंदर है। शोले फिल्म का डायलॉग याद है आपको है? जो डर गया समझो मर गया नहीं। तो बीमारी शब्द पता कहां से आया, बीमारी शब्द कहां से आया, बीमारी शब्द डर से आया है, बी माना डर, बी माना डर भय, और मारी माना बने रहना। जिन लोगों के मन में हमेशा डर बने रहता है वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि डर से हमारे अंदर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं, ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स को खराब करते रहते हैं, डैमेज करते हैं, उससे बीमारी का जन्म होता है। फिर सिनिसिज्म, दूसरों में दोष निकालने की आदत, सिनिकल बिहेवियर कहते हैं, और हॉस्टिलिटी रिवेंजफुल बिहेवियर बदला लेने की भावना, और टाइप ए बिहेवियर हर बात में प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, जैसे मैंने कहा ऐसे ही काम होना चाहिए, हर बात में मैं करना है ना, मैं ही ठीक कर सकता हूं बाकी लोग ठीक नहीं कर सकते, एक समय बहुत सारे काम करने की कोशिश करना, खाना भी खा रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, टेलीफोन भी चल रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, मल्टीटास्किंग, ये उल्टी बात है ठीक है। ऐसे लोगों सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। चलिए इसके बाद सोशल हेल्थ कैसी है, हैट्रेड, जेलेसी, कॉम्पिटिटिवनेस, थेफ्ट, डेकॉइटीज, रेप्स एंड मर्डर्स, आज समाज में ये चल रहा है नहीं। और आध्यात्मिक हेल्थ कैसी है, आइडेंटिटी क्राइसिस, सभी लोग लड़ रहे हैं, एक घर में है, बच्चे मां बाप से लड़ रहे हैं, मां बाप बच्चों से लड़ रहे हैं, पति पत्नी से लड़ रहा है, पत्नी पति से लड़ रही है, जबकि पता है कि घर में रहना, भारत में तलाक भी इतना सहज मिलता नहीं है ना, फिर भी रहना वही है, फिर भी रोज ईगो क्राइसिस ना, ईगो अंदर से ना क्लैश होता ही रहता है, आपने मेरी ईगो हर्ट कर दी, मुझे पूछा नहीं है ना नहीं? तो मतलब ये जो आज ये क्या किस कारण से है, हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ खत्म हो चुकी है, हम उस भान में रोल कॉन्शियस होकर रहते हैं, मैं पति हूं मेरे को ऐसा होना चाहिए, प्रभु कहते मैं पत्नी हूं मैं ऐसे होना चाहिए, हर जगह आपस में लड़ रहे हैं लोग। अगर हम समझे कि हम आत्मा हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे उसको भी शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए तो उसको भी प्यार चाहिए, अगर ये आध्यात्मिक हेल्थ ठीक हो जाए तो क्या होगा, फिर ईगो क्लैशेस होंगे क्या, नहीं होंगे ना। फिर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, सुनते हैं आप रोज अखबारों में, टीवी में सुनते हैं। फिर टेररिज्म, आतंकवाद क्यों हो रहा है, आतंकवाद का इलाज क्या है, कमांडोस, कमांडो फोर्स नहीं, सबका इलाज एक ही है कि अगर हम स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे सकें, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे बता सकें कि हम सब आत्मा है, एक पिता की संतान है, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान है, कोई भी, ये तो बॉडी के धर्म है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम बेसिकली आपस में कौन है, एक ही पिता के बच्चे हैं, और हम सबका सब शांति चाहते हैं, सब प्यार चाहते हैं, हमारा दादा चाहते क्या, हमारा धर्म है शांति, हमारा धर्म प्यार है सबसे, हमारा धर्म सुख है, हमारा धर्म आनंद है, हमारा धर्म सहन करना है, हमारा धर्म रहम करना है, तो क्या होगा, आतंकवाद रहेगा। अच्छा, खुशी किसे कहते हैं, खुशी किसे कहते हैं, हंसने को खुशी कहते हैं क्या, लोग जो जोर से हंसते हैं आजकल ना, आज सुना लाफ्टर क्लब्स में लोग बहुत जोर जोर से हंसते हैं, आपने देखा रामायण देखी थी आपने, रामायण सीरियल आता था पहले, सारी रामायण में हंसता कौन रहा और मुस्कुराता कौन रहा, राम हंसता रहा, कौन हंसता रहा, रावण हंसता रहा, और क्या राम एक बार भी हंसा जोर से? रावण को मार के हंसा था क्या? हंसा एक बार नहीं, ऐसा मुस्कुराता रहा हमेशा नहीं। तो हंसना कोई अच्छी बात नहीं है। हंसना हमेशा कटाक्ष करके हंसते हैं। आज इतने भी जो थे ना लाफ्टर क्लब्स हैं और ये क्या बोलते हैं उसको, जोक सुनाते हैं ना, कभी सरदारों के कभी इसके कभी उसके, ना दूसरे पे कटाक्ष मारते हैं ना फिर हंसते हैं। किसी पे कटाक्ष मार के हंसना अच्छी बात है क्या? इज दैट लास्टिंग? नहीं, उससे फायदा नहीं है। आपकी मुंह की एक्सरसाइज हो सकती है किंतु आपसे उसको फायदा हो जाए अंदर का फायदा वो नहीं हो सकता। तो एक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या है लाफ्टर की, सॉरी हैप्पीनेस की? हैप्पीनेस इज अ इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। ये अंदर की बात है। कभी आती है आपके अंदर? इट कम्स फ्रॉम, जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं तो खुश होते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं तो खुश कैसे होंगे? नहीं, तो संतुष्टता से खुशी आती है। आप अंदर से दुखी हो रहे हैं, बाहर से हंस रहे हैं, तो क्या फायदा है? कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं। आजकल हम कैसे हंसते हैं? कोई मिलता है तो मुस्कुरा देते हैं और फिर देखो सीरियस हो जाते हैं। नहीं, दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं सिर्फ। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। हैप्पीनेस अंदर से आती है। कई लोग खुशी ढूंढते हैं बाहर, कहां पर? खाने में ढूंढते हैं, फिल्मों में ढूंढते हैं। नहीं, क्या वहां खुशी है क्या? खाने में खुशी है क्या? फिल्मों में खुशी है क्या? यस, आपके साथ वाले भाई साहब शायद ठीक है, जरा मुस्कुरा के दिखाओ ना आप, है ना, मुस्कुरा के दिखाओ। तो डोंट सीक इट विदाउट, अंदर बाहर मत ढूंढो खुशी को। बाहर ढूंढना जहां पर है ही नहीं वहां कहां से खुशी होगी? एक रानी थी, उसका हार खो गया, नौलखा हार खो गया, सारे महल में से शोर मचवा दिया कि सभी मेरा हार खो गया, है ना, नौलखा हार खो गया। वो कहां था हार उसके अपने गले में। फिर एक दासी डर रही थी, पहना तो उसने खुद ही हुआ, भूल गई कि मैंने पहना हुआ है ना। तो दासी डर रही थी कि महारानी आपने तो हाथ गले में ही पहना हुआ, पर उसके हार गले में ही पड़ा हुआ। ऐसे ही शांति और खुशी हमारे अंदर के गुण हैं, बाहर नहीं मिलते हैं। जंगल में जाके, हिल स्टेशन पे जाके शांति मिलेगी क्या? जंगल में शांति है क्या? खुशी बाहर है क्या? बाहर नहीं, अपने अंदर खुशी है ना, राइट। हैप्पीनेस इज नॉट ए प्लेस। हैप्पीनेस कोई जगह नहीं है जहां पर कोई खुशी मिल जाएगी। हैप्पीनेस इज अ डायरेक्शन, एक दिशा है। अगर उस तरफ हम अपने अपने विचारों का भाव उस तरफ रखें तो हम खुश रह सकते हैं, राइट। आजकल क्या है, फिजिकल हैप्पीनेस किसमें ढूंढते हैं हम? आजकल हम फिजिकल हैप्पीनेस कहां मिलती है? खाने में, वैरायटी ऑफ जंक फूड्स, आपको पिज्जा खाने को मिले, आइसक्रीम खाने को, वाह खुश हो जाएंगे, नहीं देखते ही खुश हो जाते हैं। भले आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी बाद में देखा जाएगा, नहीं ब्लड बीपी बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, है ना, वो बाद में देखेंगे, है ना, फिर उसके लिए गोली खाएंगे। आजकल आता है ना अखबार लिखा हुआ, वो खूब खाओ हाजमोला से बचाओ, है ना भाई, पहले खूब खाओ क्यों फिर हाजमोला खाने पड़े? नहीं, खूब खाओ हाजमोला से बचाओ। फिर क्या है, फिजिकल लग्जरी बिलोंगिंग्स, कुछ पैसा मिल गया, अच्छा सा हार मिल गया, अच्छे से अंगूठी मिल गई, नहीं गहने मिल गए, कहीं प्राइज मिल गया, है ना, 10 लाख की लॉटरी निकलाई, 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई तो खुश हो जाते हैं ना। वो कैसी है, फिजिकल हैप्पीनेस है, राइट। फिर कई टूर पे चले गए, टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, खुश हो जाते हैं, पर इज दैट हैप्पीनेस? क्या वो सचमुच खुशी है क्या? कॉमेडी शो देख लिया, है ना, मेंटल हैप्पीनेस क्या? लाफिंग, लोग हंसना, लाफ्टर क्लब में जाते हैं, रीडिंग नॉवल्स, नॉवल पढ़ के खुश होते हैं ना, और क्या पढ़ते हैं, कीपिंग पेट्स, आदमी को प्यार नहीं करते, कुत्ता बिल्ली को प्यार करते हैं ना, नहीं आदमी को आंख दिखाते हैं, कुत्ता बिल्ली गले लगाते हैं ना। फिर डेकोरेशन कर लेते हैं, फैशन कर लेते हैं, है ना, इसमें खुशी ढूंढ रहे हैं, नहीं ऐसा। फिर क्या सोशल हैप्पीनेस, क्या पार्टी में जाते हैं, ओल्ड एज होम में जाते हैं, है ना, बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में जाके चलो अपने बूढ़े लोगों से मिलेंगे, वहां से उनसे बातें करेंगे। फिर ऑर्फनेज में जाते हैं, कई लोग अनाथालय में जाके दूसरों को कुछ दान करते हैं, उससे खुशी लेते हैं। हॉस्पिटल जाके कुछ उनको समझाते हैं, जेल्स में जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं, उससे खुशी ढूंढते हैं। फिर क्या स्पिरिचुअल हैप्पीनेस किसमें मिलती है, बिल्डिंग टेम्पल, कई लोग मंदिर बनवा देते हैं, है ना, मस्जिद बनवाते हैं, कुछ लोग मंत्र पढ़ के खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना, ओम भूत भवा स्वा तत्सवितर वरेण्यम, मतलब नहीं पता, है ना, मतलब नहीं पता ओम भूत भवा स्वा क्या होता है, पर वो मंत्र पढ़ के सोचते खुशी मिलेगी, शायद भगवान खुश हो जाएगा, मैं खुश हूं कि नहीं, भगवान तो खुश हो ही जाएगा। मुझे याद है मैं बचपन में ना हनुमान का भगत था, मैं स्कूल जाने से पहले 7 बार हनुमान चालीसा, मेरे को मन में ऐसे किसी ने बोला 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ दो आप स्कूल में फर्स्ट आते रहोगे। वैसे मैं हमेशा फर्स्ट आता रहा, किंतु हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं मेहनत करने से, किताबें पढ़ने से, है ना। तो मैं 7 बार, मेरा स्कूल 1.5 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, पैदल जाते थे हम लोग बचपन में, तो रास्ते में जाते जाते मैं क्या करता था, बस वो हनुमान चालीसा को मैं इतनी, क्योंकि टाइम थोड़ा होता था ना, 15-20 मिनट पहुंच जाते थे हम, टाइम थोड़ा, 7 बार पढ़ना वो श्री गुरुचरण सरोजदास से लेके और आखिरी तक, है ना, तो अब इतनी तेज पढ़ते थे, अंदर अंदर इतनी तेज रटी हुई थी ना, अभी भी रटी हुई होगी शायद, अभी बहुत साल से नहीं पढ़ी, 29 साल से तो नहीं पढ़ी, तो इतनी तेज मैं अंदर अंदर रिवाइज करता था, जय हनुमान ज्ञान अनुसार, मतलब इतना तेज के हनुमान को भी समझ नहीं आए मैंने क्या बोला। तो आप देखिए ये हालत, तो ये कहते हैं मंत्र पढ़ते रहते हैं, रीडिंग स्पिरिचुअल्स, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, है ना, वहां पर अभी कहां गए थे, केदारनाथ जाएंगे, है ना, और स्पिनिंग रोजरी, माला, माला के दाने होते ना वो, राम 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 करते जाएंगे, है ना, डोनेशन देंगे, डिवोशन कहीं करेंगे, कहीं भक्ति करेंगे, व्रत रखेंगे, है ना, उसके द्वारा भी खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते, संतोषी माता का व्रत रखेंगे, 16 शुक्रवार करेंगे, है ना, नहीं? ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, आजकल आध्यात्मिक खुशी यहां से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये साधन क्या है, क्या साधन सोचना जरा आप, है ना, जब संतुष्ट होंगे तो खुश होगा, डेफिनेशन ये है, परिभाषा ये है, और ये करने से क्या आप संतुष्ट हैं, क्या संतुष्ट होंगे, क्या मांगने वाला कभी खुश रह सकता है क्या। आपको मैं एक बात सुनाता हूं, यहां पर ना एक जोक सुनाता हूं छोटा सा। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी था, वो बाजार से निकल रहा था, तो बाजार से निकला तो उसने कई दिन से भूखा था, उसने एक आदमी को कहा, भाई साहब मैं कई दिन से भूखा हूं, 3-4 दिन से खाना नहीं मिला, मुझे कुछ खाने को दो ना। तो उसने कहा टमाटर खाओ, साथ में टमाटर का एक ना वो होता ना, एक टमाटर बेचने वाला था, एक रेडी पे टमाटर बेच रहा था, उसके पास चला गया, उसने कहा भाई साहब ये टमाटर, मैं 3-4 दिन से भूखा, मुझे टमाटर खाने को दो ना। तो उसने सोचा टमाटर वाले ने कि भाई मैं इतने सालों से टमाटर बेच रहा हूं, आज तक किसी भिखारी ने मुझसे टमाटर नहीं मांगे भीख में, तो ये आदमी मुझसे टमाटर भीख में क्यों मांग रहा है। जवान लड़का था वैसे तो, 20-22 साल का होगा जो भीख मांगने वाला। तो उसने कहा तेरे को, तुमको किसने कहा टमाटर खाओ, मेरे को टमाटर खाने के लिए किसको, किसने बोला तेरे को। कहता ये आदमी खड़ा ना इसने बोला, कहता ये तोतला है, ये का को टा बोलता है। तो आप टमाटर खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे खाते हो, सभी टमाटर खाते हैं या नहीं, या वो वाला है वो दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, इंटरनेशनल फकीर आया, ऐसा ना गीत है ना, कौन सी फिल्म का, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, ऐसा गीत है ना। हम लोग उठते क्या कर, पता क्या शुरू करते हैं, स्वेच्छुअल बात है ये, क्या करते हैं, राम की फोटो दिखाई दी, भगवान कटोरा आ गए, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देना, आज ये काम ठीक हो जाना चाहिए, आज मेरी परफॉर्मेंस ठीक हो जानी चाहिए, आज ये काम अच्छा हो जाए, कृष्ण दिखाई दिया कृष्ण के आगे, हनुमान जी दिखाई हनुमान जी के आगे, हनुमान जी ठीक है ध्यान रखना, है ना, शेरावाली माता दिखाई शेरावाली माता के, कटोरा मशा ऑन ही रहता है, नहीं नहीं रहता कटोरा ऑन, तो कौन से फकीर हैं, इंटरनेशनल फकीर, नहीं जो सामने मिला कटोरा सामने कर दिया, नहीं करते,
इसलिए मैं कह रहा हूं आज तक जो हुआ सो हुआ, अभी क्या सभी क्या खाना, टमाटर खाना, ठीक है, सुबह उठते ही टमाटर खाना शुरू करना, याद रहेगा। मैं भी पहले वही था, कटोरा हमेशा ऑन रहता था, जो मिला सबसे डर लगता था, ये इसको भी कर लो, चलो गणेश को भी कर लो, मानता नहीं था फिर भी चलो कर लो। मैं सोचता गणेश का सिर कहां से आया, इतना हाथी का सिर कैसे लगा सकते हैं आदमी के सिर पे, ये तो कोई सर्जरी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, हम ए ग्रुप को बी ग्रुप का खून नहीं चढ़ा सकते, तो यहां तो आदमी के सिर पे हाथी का सिर लगा दिया। तो ये तो मैं सोच सोच के आश्चर्यचकित होता था, यही मेरे को प्रॉब्लम थी भक्ति करने में। हनुमान जी ने छलांग मारी और रामेश्वरम से, और छलांग मार दी सीधे श्रीलंका में। स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था पढ़ने का, तो मैं देखता हमारे तो खिलाड़ी सब ओलंपिक में जीरो आते हैं ना, एक गोल्ड मेडल लेके नहीं आते हैं ना, हमारे पूर्वज इतने बढ़िया और हमारे अभी सभी फिसड्डी आखिरी नंबर भारत का, आश्चर्यचकित होते थे नहीं होते। हनुमान जी कभी छोटे से हो गए, कभी इतने बड़े हो गए, मतलब इतने बड़े हो गए, इतने बड़े माना सिर आसमान को सिर लग गया, और कभी मक्खी से भी छोटे हो गए, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो यह सिर्फ खैर मैं वो कहानी सुनाऊंगा नहीं अभी आपको, जिससे मैं फिर बाबा के ज्ञान में आया। जब ये साथ में क्यूरियोसिटी थी ना मन में, कही रावण के सिर 10 कैसे थे, रावण के सिर 10 कैसे थे, एक सिर उसको समझाना बड़ा मुश्किल है, खिलाना मुश्किल है, 10 सिर को कैसे खिलाए और कैसे चलाए, और 10 सिर एक साथ बोले तो प्रॉब्लम हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए ने? और सोए, मैं तो हमेशा करवट लेके सोता हूं, 10 सिर वाला सोए कैसे, सोचो आप जरा, आप भी सोचना, मैं बहुत साल सोचा फिर ज्ञान में, आप भी सोचना, शायद आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाए, हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, आपके दिमाग चलेगा तो अच्छा, कुछ नया मिलेगा ना आपको ढूंढने को। चलिए, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हैप्पीनेस इज आउटर हैप्पीनेस और ट्रांजिटरी हैप्पीनेस, नॉट इनर हैप्पीनेस। जो आज की जो हैप्पीनेस, कैसी हैप्पीनेस है, बाहरी हैप्पीनेस है, ये थोड़े समय की खुशी है, ऐसी खुशी नहीं जिससे हमें सदा सदा खुश रह सके, ऐसा नहीं है। अंदर की हैप्पीनेस नहीं, अंदर की हैप्पीनेस सदा रहेगी ना, अंदर की चीज खुश सदा अंदर रहेगी, सोते सोते भी रहेगी है ना, कभी उठ जाए तभी खुश रहेंगे, मुस्कुराते हुए सोते रहेंगे है ना। अभी आदमी कैसा होता है, सोया देखो कैसे सोते हैं, ये तो सोते सोते भी मुस्कुराते रहेंगे ना, चेहरे पे नेचुरल खुशी रहेगी ना। इज इट हैप्पी लाइफ, क्या ये खुशी है, आप क्या समझते हो, खुशी नहीं है ना। इज एनीबडी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई खुश है क्या, स्वस्थ तो कोई भी नहीं है, हेल्दी तो कोई भी नहीं है, मैंने बताया पहले, कोई खुश है क्या, खुश कोई है, कोई भी खुश नहीं। अच्छा मनमोहन सिंह खुश था क्या, सोनिया गांधी, मोदी खुश है, नरेंद्र मोदी खुश है, स्वास्थ्य मंत्री खुश है क्या, हर्षवर्धन खुश है नहीं है ना। तो आज कोई भी खुश नहीं, प्रणब मुखर्जी खुश है क्या, कोई भी खुश नहीं है। तो क्या करें, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, हमारा मन और बुद्धि अगर खुश है तो, मन अगर वो प्योर है ना तभी हम खुश रह सकते हैं, हमारा मन और बुद्धि शुद्ध है पवित्र है तो ही खुश रह सकते हैं, मन में गंदगी हो बुद्धि में गंदगी हो खुश नहीं रह सकते। शांति है तो खुश है, ट्रुथफुलनेस सच्चाई है तो खुश है, फियरलेसनेस अगर हम अंदर से निर्भय है तो खुश है, अंदर डर हो तो हम खुश रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन शक्ति हो तो खुश है, सहन शक्ति ना हो तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। आज का इंसान गुब्बारे की तरह से है, गुब्बारे में हवा का भरते जाओ फूलता जाओ बड़ा होता जाता है, और एक आदमी सुई लगा दो उसमें जाके तो क्या होता है, एकदम पिचक जाता है। ऐसे आज का इंसान है, कोई महिमा करता रहे तो आदमी खुश होता रहता है, एक आदमी आया आके कुछ गलत बोल देता है एकदम खुशी गायब हो जाती है, नहीं सहन शक्ति नहीं ना उसके अंदर। तो ये वाली बात है, इजी नेचर सरल स्वभाव का व्यक्ति सदा खुश रह सकता है, मुझे ये चाहिए वाला व्यक्ति कोई खुश रह सकता है क्या, मुझे तो एसी कमरा चाहिए है ना, मुझे तो आपने कहां रख दिया, मैं तो बड़ा आदमी हूं है ना, तो क्या होगा, खुश रहेगा वो, जहां बिठा दो एक जहां लेटा दो ठीक है भाई, एक चार पैर सोना ही तो है ना, चार ही दिन तो रहना है ना, ऐसा व्यक्ति खुश रह सकता है। जो अपने साथ टैग पूछ लगा के रखता है वो खुश नहीं रह सकता है ना, ठीक है,
जो मधुरता वाला व्यक्ति, जो मीठा बोलने वाला खुश रह सकता है, नहीं? मीठा बोलने वाला खुश रह सकता है, कड़वा बोलने वाला खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। बड़ा दिल, जिसका दिल बड़ा है, ये दिल नहीं, ये दिल बड़ा हुआ सांस नहीं आएगा, ठीक है? ये वाला दिल ना, आत्मा का दिल बड़ा है, किसी ने कुछ कह दिया है, कोई बात हो गई, तो वो खुश रह सकता है, राइट? एम्पैथी, जिसके अंदर रहम है ना, वो खुश रह सकता है। लव, जिसके अंदर सच्चा प्यार है, वो खुश रह सकता है। सैक्रिफाइस, जिसमें त्याग वृत्ति वाला व्यक्ति खुश रह सकता है, वो संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति खुश रह सकता है। संतुष्ट कैसे रहेगा? हर आदमी का अपना अपना भाग्य है, कहते ना, समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं। हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य है। मैं कंपेयर करूं अपने आप को मुकेश अंबानी से, क्या मुकेश अंबानी खुश है? वो भी खुश नहीं है, कितनी सारी तो बीमारियां हैं उसको, 26 गोली रोज खाता है बेचारा, कितनी सारी गोलियां खाता है वो, बहुत बहुत पैसा है किंतु मीठा नहीं खा सकता है, बहुत सारा पैसा है किंतु तलाव पकौड़ा नहीं खा सकता, पराठा नहीं खा सकता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो क्या करे, नमक नहीं खा सकता क्योंकि बीपी हाई है, तो अब बताइए, तो नमक नहीं खा सकता, चीनी नहीं खा सकता, तलावा नहीं खा सकता, मक्खन नहीं खा सकता, सूखी रोटी खानी है उसको भी, नहीं घिया तोरी की सब्जी खानी, तो वो क्या, उसका फायदा पैसे का, पैसे का फायदा है क्या? तो ये नहीं कि हमारे पास क्या है, है ना, हमारा संतुष्ट रहना, हमें हर हाल में संतुष्ट रहना, ओके? नाउ टुडे मोर देन 95% डिजीज आर साइकोसोमेटिक, स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव से कनेक्टेड है हमारी बीमारियां, और तनाव आज सबकी लाइफ में है। अब तनाव सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन है? आज हमें जीवन शैली की आवश्यकता है, क्योंकि हमें जीवन, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो गया है, तनाव जीवन का अंग बन गया। अगर तनाव जिस दिन ना हो ना, उससे लगता है तनाव क्यों नहीं, इस बात का भी तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है, आज टेंशन क्यों नहीं है ना? नहीं, तो अभी क्या, वट एवर वी डू फ्रॉम टाइम टू टाइम, वी गेट अप, वी गेट टाइम, हर चीज का टाइम फिक्स है हमारे अंदर, हमारे हाइपोथैलेमस में घड़ी लगी हुई है, उसमें सोने का समय है, उठने का समय है, सैर करने का समय है, मेडिटेशन करने का समय, हर चीज का समय फिक्स है। अगर हम उसको फॉलो करते तो हम हेल्दी रहते हैं, उसको फॉलो नहीं करते तो हम बीमार हो जाते हैं। अनहेल्दी, अनहैप्पी लिविंग क्या है, प्रेशर्स में रहते हैं, डिमांड्स में रहते हैं, मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ है, क्रोध है अंदर ना, चिंता है, गुस्सा है, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। राइट लिविंग क्या है, हेल्थ और हैप्पीनेस शुड गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमारे अंदर एक क्लॉक है, मैंने बताया ना, हमारे घड़ी लगी है हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया है ना, कैसे वो जीवन में सब कुछ करते हुए ज्वैरी थे। आप आज शायद आपको सुनाएंगे, इनकी हिस्ट्री सुनाएंगे, कैसे कैसे उनका जीवन था, है ना। और स्ट्रेस फ्री लिविंग क्या पॉसिबल है कि नहीं, आप क्या समझते हैं, तनाव मुक्त जीवन पॉसिबल है कि नहीं है, कैसे पॉसिबल है, मुश्किल है? देखिए बड़ा सिंपल, एक तनाव की डेफिनेशन क्या है, तनाव की डेफिनेशन है प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। हमारे जीवन में प्रेशर्स होते हैं ना, एक तो बाहरी प्रेशर होते हैं, घर के प्रेशर, समाज के प्रेशर, है ना, लीगल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, और एक है अपने अंदर का प्रेशर। अंदर का प्रेशर क्या है, आपकी किसी की नेचर बहुत सेंसिटिव होती है, थोड़ी थोड़ी बात उसको फील ज्यादा होती है, किसी को गुस्सा करने, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, किसी के अंदर की नेचर है ना उसकी, है ना, जल्दीबाजी किसको बहुत आदत है, है ना, किसको बहुत डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, कई लोग काकरोच से, चूहों से डर लगता है ना, घर में बहुत काकरोच है, चूहे हैं ना, तो वो भी बता एक नेचर बन गई ना हमारी, अंदर की, अंदर का प्रेशर है ना ये तो। और बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो ये अंदर के प्रेशर ना मेरे, मुझे इनके साथ जीना पड़ेगा, नहीं जीना पड़ेगा, एक दिन में तो बदलेंगे नहीं। ऐसे बाहर के प्रेशर भी परिवार में है, परिवार को बदल तो नहीं सकते हैं, समाज को बदल तो नहीं सकते हैं, तो प्रेशर मे नॉट बी मॉडिफाइबल, किंतु ये आत्मिक शक्ति जो है, दयाल भाई मैं 11:30 पूरा करूं, मैं 10:30 शुरू किया है ना, हाँ, इनर स्ट्रेंथ, आत्मिक शक्ति या कोपिंग एबिलिटी, अगर ये रेशियो 1 से अधिक हो तभी आप तनाव महसूस करते हैं। तो प्रेशर्स को तो आप बदल नहीं सकते तुरंत, क्या बदल सकते हैं आप, आत्मिक शक्ति बदल सकते हैं। अगर आप आत्मिक शक्ति बदल लें तो क्या होगा, क्या होगा? अगर आत्मिक शक्ति कितना बढ़ा सकते हो मुझे बताओ। एक बार आप सब खड़े हो जाओ तो मैं समझता हूं अच्छा रहेगा। मैं एक बार सबको देखना चाहता हूं। एक बार सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, एक बार सभी खड़े हो जाओ, सभी एक बार ना एक दूसरे के आसपास से सामने होके ना मुस्कुराओ जरा, ऐसे आमने सामने खड़े हो। हंसना नहीं, हंसना नहीं, रावण की तरह नहीं हंसना, मुस्कुराओ सिर्फ, है ना, मुस्कुराओ, 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 सभी हाथ मिलाओ जरा एक दूसरे से, हाथ मिलाओ, मुस्कुराओ और हाथ मिलाओ अच्छे से, अच्छे से, शक्ल देख के, शक्ल देख के मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी बैठ जाओ, बैठ। कई बार क्या होता है, दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में पहले रहते थे ना हम लोग, पड़ोसी एक दूसरे को जानते नहीं है, सालों से रहते हैं, ऐसा भी होता है ना। मैंने कहा आप आस पास बैठे कल से एक दूसरे को पहचान तो लो, नहीं साथ में किसके साथ बैठे हो, ठीक है। तो प्रेशर्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, किंतु किसको 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 मॉडिफाई कर सकते हैं, आत्मिक शक्ति को। कितना बढ़ा सकते हो, कितना बढ़ा सकते हो, इनडेफिनिट, कितना इन्फिनिट तक बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। आपने देखा यहां पर शांतिवन में जब आप आए मनमोहिनी वन में, यहां पे आप लोग जो काम कर रहे हैं भाई बहन, वो टेंशन में है क्या, स्ट्रेस में, क्यों नहीं, क्या उनको उनको काम नहीं करना पड़ता क्या? वो सब 3:30 बजे उठते हैं, अपना भी काम करते हैं, जो ड्यूटी है वो भी काम करते हैं, या खाना भी बनाते हैं, है ना, सब घर की बिल्डिंग का भी ध्यान रखते हैं, हर चीज का, पानी भी सारा बाहर से आता है, बल्कि हर चीज महंगी मिलती है यहाँ पर आबू रोड में, है ना, बाहर से मंगानी पड़ती है ना, तो हर चीज का प्रेशर है, किंतु क्या चीज है उनके पास कि उनको कभी टेंशन नहीं होती, आत्मिक शक्ति ज्यादा है। आत्मिक शक्ति ज्यादा होने से इसलिए उनको किसी बात की टेंशन नहीं होती। तो आप भी ऐसा सदा हो सकता है कि पॉसिबल कि आपको कभी टेंशन हो ही नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप टेंशन में रहते हो, मतलब सब बीमारियों का कारण है टेंशन। और स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, टेंशन फ्री रहना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी, आपका हार्ट की दर्द खत्म, एंजाइना खत्म हो जाएगा, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, हड्डियों में दर्द ठीक हो जाएंगे, घुटने ठीक, कमर दर्द ठीक हो जाएगा, माइग्रेन ठीक हो जाएगा, पेट का हाजमा ठीक हो जाएगा, कब्जी खत्म हो जाएगी, गर्दन का दर्द खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो गई, तो दवाइयां काम करना शुरू कर देंगी, जो दवाई काम नहीं करे दवाई काम करना शुरू कर देंगी। तो सिर्फ टेंशन को दूर करने का एक ही तरीका है, आत्मिक शक्ति बढ़ाओ। बढ़ा सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, आप किसी ने बेगमपुर देखा, नहीं देखा आज तक, बेगमपुर देखा, बेगमपुर, बेगमपुर देखा आपने, है जी, वो तो ताश के पत्तों में होता है बेगम बादशाह, है ना। बेगमपुर दिल्ली में भी है ना, लखनऊ में भी है ना, करनाल में भी बेगमपुर है ना, और कहीं देखा आपने, है जी, है जी, मेरठ में भी बेगमपुर है, आपने यहां नहीं देखा बेगमपुर, ये बेगमपुर है एक्चुअली, बेगम वो वाली बेगम नहीं, उसको देख के तो टेंशन हो जाए कभी कभी, है ना, किंतु बेगम जिसको देख, जिसमें कोई गम ना हो ना, बेगमपुर। और आप कौन है वहां के, आप बेगमपुर के बादशाह हो, नहीं देखो आपको, आप उठते हो अपने आप, उठते सिर्फ अपने आप, बाकी आपको चाय तैयार है ना, खाना खाने जाओ तो खाना तैयार है ना, यहाँ आओ तो सोफा तैयार है ना, फिर जाके सो देखो बेड तैयार है ना, तो आप कौन हो गए सभी, किसके बादशाह, ये बेगमपुर है और आप कौन है, बादशाह, ठीक है। तो बेगमपुर में आप आए हो, कहां पर आए हो, अपने घर में जाके क्या बना देना, आप भी घर को भी क्या बना देना, बेगमपुर बना देना, ठीक है, तो आप सब खुश रह सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा, सिर्फ अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे, आत्मिक शक्ति बढ़ाने से एक ही तरीका है, ABCD। क्या तरीका है, ABCD, A फॉर आत्मा, मैं ये देह नहीं हूं, स्थूल देह नहीं, उसमें देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, पहली बात। दूसरी बात, बी फॉर बाबा, बाबा माने पिता। हम सब आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा शिव, ठीक है। और उससे मेरे सर्व संबंध है, सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन में संबंध, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। हम आरती में क्या गाते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, नहीं गाते। तो हमारे सर्व संबंध उसके साथ है। और डी फॉर ड्रामा, संसार एक ड्रामा है, नाटक है, इसमें हर आत्मा एक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा। अगर एबीसी है तो डी है, मैं आत्मा हूं परमात्मा के साथ, परमात्मा से मेरा कनेक्शन है, संबंध की अनुभूति है, तो डी है, ड्रामा है। मतलब ड्रामा माना जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो आज प्रॉब्लम कहां हो रही है? नहीं तो आज क्या प्रॉब्लम हो रही है? जो हुआ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत खराब हुआ मेरे साथ, नहीं, उसने धोखा दिया, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, वो उसने वैसा किया, और जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, खराब हो रहा है। देखो वो मुझे दुख देता है, वो मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे ऐसे बोलती है, वो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, घर में बीमार हो रहे हैं, वहां पर ऐसा हो रहा है, बिजनेस में घाटा चल रहा है, तो अच्छा नहीं हो रहा है। और जो होने वाला है पता नहीं क्या होने वाला है। अगर एबीसी है तो डी है, राइट। तो जितना इस एबीसीडी को बार बार रिवाइज और रियलाइज करते हो, रिवाइज अंदर अंदर रिवाइज करो, मुंह से नहीं बोलना, कहीं अभी शुरू कर दो बोलना ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, बी फॉर ड्रामा, जैसे आरती है ना, गाने की आदत है ना, आरती गाने की, हनुमान चालीसा गाने की, नहीं ऐसे नहीं शुरू करना, ठीक है। अंदर अंदर महसूस करो, अनुभव करो, ठीक है, तो फिर आपके अंदर शक्ति आएगी। ओके, तो आत्मिक शक्ति को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? ए बी सी डी से, आत्मा, बाबा, कनेक्शन एंड ड्रामा। तो जितनी बार आप दिन में, कम से कम आप 21 बार तो कम से कम रिवाइज करो दिन में, 21 बार रिवाइज करो, 21 बार रियलाइज करो, अनुभव करो इस बात को, तो आपके अंदर आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी। और ये फार्मूला है, हेल्दी शब्द कहां से आया? हील प्लस डाई से आया। सारे विश्व में एक ही व्यक्ति है जो आपको हील कर सकता है, वो कौन है? वो कौन है? डॉक्टर है क्या? भगवान है क्या? स्वयं आप है। सारे विश्व में सिर्फ एक ही आदमी है जो आपको हील कर सकता है, वो कौन है? सिर्फ आप है। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, परमात्मा आपको, अगर आप परमात्मा के श्री डायरेक्शन पे चलते हैं, परमात्मा आप एक कदम चलो, भगवान आपको 100 कदम मदद कर सकता है, किंतु ठीक नहीं कर सकता है। अगर आप एक कदम भी ना उठाओ तो भगवान आपको मदद करेगा? नहीं कर सकता। डॉक्टर ने आपको बताया आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, आप फॉलो करें तो आपको फायदा, नहीं तो फायदा कुछ भी, एक परसेंट भी फायदा नहीं होगा। तो एक ही, अगर आप ये समझ ले कि ये मेरी जिम्मेवारी है अपने आप को स्वस्थ रखना, ये मुझे अपने आप को खुद समझाना है, हील दाई, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जीवन की गाड़ी अपने हाथ में ले लें, ये तरीका है स्वस्थ बनने का, ठीक है। दूसरी बात, हेल्दी मीन्स, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, हिंदी में कहते हैं स्वस्थ। तो स्व माना इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं, बाहर वाला मैं नहीं, ये फिजिकल मैं नहीं, अंदर वाला मैं। और स्थान, अस्थ मीन्स कॉन्शियस, तो स्वस्थ मीन्स इनर सेल्फ कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस। आपने बताया ना बीमारी शब्द कहां से आया? बीमारी माना बी माना डर, मारी माना बने रहना। अगर आपके अंदर डर बना हुआ है तो आप बीमार हैं। डर किस बात का होता है? जब अपने आप को बॉडी समझते हैं तो बॉडी का फीलिंग आती है, अब पता नहीं मेरी घुटना खराब है, मेरी कमर खराब होने वाली, कभी एसिडिटी बनती है तो डर पैदा होता है, मरने का डर, बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर पैदा होता है। और रोल कॉन्शियस बन गए तो भी क्या है, तो भी मेरी आज पोजीशन बहुत अच्छी है, कल खराब ना हो जाए। और मटेरियल कॉन्शियस बन गए तो आज मेरे पास बहुत पैसा, कल कम ना हो जाए, उसका भी डर है। तो बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस, ये हमारा आउटर सेल्फ है। अगर हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस रहते तो उससे बीमारी पैदा होती है। इसकी बजाय सोल कॉन्शियस हो जाओ तो क्या होगा? सारे डर खत्म हो गए। मैं आत्मा हूं, ना मर सकती हूं, ना जल सकती हूं, ना कट सकती हूं, ना बूढ़ी हो सकती हूं, ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और मुझे आत्मा का धर्म ही क्या है? शांति है, प्यार है, खुशी है। तो जब इस फीलिंग में रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप स्वस्थ रहेंगे। तो हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस। आपने बचपन में कविता सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, कौन सी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, सुनी सभी ने, पढ़ी है, पढ़ी है सभी ने, गाई भी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर। ये कविता एक फ्रेंच पोएट की लिखी हुई है, आज से 465 साल पहले। तब उसके अंदर से कविता निकली थी कि तब एक आदमी, उसका फ्रेंड था, उसका दोस्त था, मर गया बचपन का दोस्त। तब उसको अंदर से रियलाइज होता है कि मैं जिंदा हूं, ये कैसे मर गया। तब उसको रियलाइज होता है कि एक सितारा है अंदर, जब तक वो चमकता रहता है अंदर, तब तक सब कुछ चलता रहता है। जब वो निकल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, किंतु दिखाई भी नहीं देता है। तो कैसे सब कुछ चलता है? तब उसके अंदर से कविता निकलती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फिर उसका ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है, फिर देखता है परमात्मा कहां है, सूर्य चांद तारों पे है क्या, या उसके, फिर देखता है उसके ऊपर भी एक स्टार है, बियॉन्ड, वो परमात्मा। फिर क्या लिखता है, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, लाइक ए डायमंड, मतलब डायमंड जैसा है, डायमंड सदा चमकने वाला, ये ट्विंकलिंग है, कभी चमकता है कभी बुझ जाता है, कभी चमकता है कभी बुझ जाता है, किंतु वो हमेशा हमेशा चमकता रहता है। लाइक ए डायमंड इन द, उसने फिर गलती कर दी, लिखना चाहिए था अबाउ द स्काई, क्या लिख दिया, इन द स्काई। तो दो लाइन आत्मा के लिए और दो लाइन परमात्मा के लिए। ये कविता 465 साल पहले लिखी गई थी, चार लाइनें, फिर दो बहनें थी, किम टेलर एंड जेन टेलर, लंदन में 1806 में उन्होंने इसमें 12 लाइनें और जोड़ के इसको नर्सरी राइम बना दिया। उसके बाद सभी नर्सरी स्कूल्स में वर्ड ओवर सुनाया जाता है, लोग पढ़ते हैं कि तो हम पढ़ते हैं, कि तो हमें पता है क्या इसका मतलब। इस कविता में ही आत्मा परमात्मा का रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आप याद रखें, सेल्फ अवेयरनेस, ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस। और तीसरी बात, हैप्पीनेस मीन्स, हैप्पी मीन्स नेचर ऑफ द सेल्फ, ये हमारी अंदर की नेचर है। इंसान ही सिर्फ मुस्कुरा सकता है, और कोई मुस्कुरा सकता है? कुत्ता, बिल्ली, हाथी मुस्कुरा सकता है? कोई भी पंछी मुस्कुरा सकता है? सिर्फ इंसान मुस्कुरा सकता है। सो ह्यूमन बीइंग मीन्स हैप्पीनेस। इंसान का धर्म है खुश रहना। सबसे बड़ी ब्यूटी क्या, किसकी, क्या ब्यूटी है इंसान की, बताओ? सबसे सुंदरता क्या है? मुस्कुराहट। आदमी काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, मुस्कुराता आदमी सबको अच्छा लगता है, लगता है नहीं? तो ये हमारी ब्यूटी है, वो सोल कॉन्शियस, राइट। जितना आप सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना मुस्कुराते रहेंगे। जितना बॉडी कॉन्शियस होंगे तो क्या होगा, डर लगेगा, फियर आएगा, इनसिक्योरिटी फील होगी, मुस्कुराहट कम हो जाएगी। जितना रोल कॉन्शियस बनेंगे उतना मुस्कुराहट और कम हो जाएगी। जितना मेटेरियल कॉन्शियस बनेंगे उतना और मुस्कुराहट क्या होगी, कम हो जाएगी, नहीं? सोल कॉन्शियस रहने में ऐसे आप चमकते रहेंगे, ठीक है, हमेशा ही। और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, इंसान जो है, इंसान क्या है, टू हील दाई सेल्फ वन नीड सेल्फ एम्पावरमेंट, एंड एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम ट्रू नॉलेज। एंड ट्रू नॉलेज कहां से आती है, फ्रॉम गॉड, बिकॉज गॉड इज ट्रूथ। पहले इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग, तीन बातें, सूचना और फिर पढ़ाई और समझानी, तीनों के बाद पहले परमात्मा अपने बारे में समझाने देता है, मैं कौन हूं, कैसे मैं आता हूं, ब्रह्मा के तन में आता हूं, और फिर मैं क्या करता हूं आके, ये बताता है, और आत्मा के बारे में परिचय देता है, मन के बारे में और बॉडी के बारे में। जब तीनों एनर्जी की हार्मनी होती है तो उससे हम हेल्दी बन जाते हैं। ह्यूमन बींग शब्द दो शब्दों से बना, ह्यूमन प्लस बींग। ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया, लैटिन वर्ड है ह्यूमस, और ह्यूमस माना सॉयल, मिट्टी, और बीइंग माना लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स माना सोल। तो ये जो सॉयल कॉन्शियसनेस, तीन चीजें आती है, रो बॉडी, रोल और मटेरियल। और सॉयल और सोल में क्या फर्क है, देखो स्पेलिंग में क्या फर्क है, अगर देखें तो क्या फर्क है सॉयल सोल में, इसमें आई है, इसमें यू है। तो जब भी आप सॉयल कॉन्शियस है ना, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस होते हैं, तो आपके अंदर आईनेस आ जाती है। क्या जाती है? आईनेस, आईनेस एंड माइनेस, मैपन और मेरापन आ जाता है। और सोल कॉन्शियस माना यू, माना यूनिवर्सल, जैसे अपने को आत्मा समझते, सबके बारे ख्याल आता है, हम सब आपस में भाई भाई,
मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, एक ही बाप के बच्चे हैं, तो आपस में क्या आएगी? ब्रदरहुड आ जाएगी। इसमें मैं आने शुरू हो जाती, ठीक है। मैं कौन करता है सोचना, आउटर सेल्फ ना जी, हमारा आउटर सेल्फ अनस्टेबल है, बॉडी भी अनस्टेबल है, रोल भी अनस्टेबल है और मटेरियल भी अनस्टेबल है। इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है। इनसिक्योरिटी से पांच विकार पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कैसे पैदा होते हैं? इनसिक्योरिटी से पैदा होते हैं, और इससे ये मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती हैं। टाइप ए जो होता है जल्दीबाजी, हर चीज में जल्दीबाजी, ईर्ष्या, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, ये मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती है। और इससे फिर आगे 10-10 और पैदा होती है। ये पूरी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज कहां से पैदा होती है? आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस से पैदा होती है। और इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, इसी को तनाव कहते हैं। विचारों की स्पीड बढ़ जाती है, इसी को हम तनाव कहते हैं। और उस तनाव को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? टेंशन को दूर करने के लिए हम गलत खाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने में खुशी ढूंढते हैं। खुशी अंदर खत्म हो जाती है, खाने में खुशी ढूंढते हैं। और ऐसे आदमी को टेंशन लेना, देखो नींद नहीं आती है, देर से सोता है, देर से उठता है, तो क्या करेगा? सैर नहीं कर सकता। सैर नहीं करता है तो वो टेंशन में रहता है, तो फिर क्या करता है ऐसा व्यक्ति? कोई शक्ल देख के लोग क्या कहते हैं? तुम बहुत टेंशन में हो ना, चलो सिगरेट पी लो, एक घूंट अंदर जाएगा तो तुम गम बाहर हो जाएगा ने? सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, दवाइयां, ड्रग्स खाते हैं ना, ऐसे इस कारण से, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, दे बिकम इजी प्रे टू एडिक्शंस। और ऐसा आदमी फिर सदा बीमार रहता है और दुखी रहता है, ठीक है। बी मीन्स फियर, मारी मीन्स कॉन्स्टेंसी ऑफ, राइट, दिस इज लॉस ऑफ ईज। इसकी बजाय अगर आप इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाओ तो क्या होगा? सोल, सोल क्या है? स्टेबल है सदा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मरने का डर ही नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव ही शांति, प्यार, ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद है, शक्तियां है। शरीर का स्वभाव क्या है? काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये देह की आदत है, ये बताया ना, जल्दीबाजी, आलस्य, अलबेलापन, देह की आदत है। तो आत्मा का स्वभाव ये है, सात गुण, शांति, प्यार, खुशी। जैसे अपने को आत्मा समझोगे, अपने आप शांति आ जाएगी। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, एक बाप के बच्चे, शांति आ गई, प्यार आ गया, खुशी आ गई। मतलब प्यार की डेफिनेशन क्या है बताओ, कोई बताएगा? व्हाट इज लव? व्हाट इज लव? एनीवन? गिविंग। एनीथिंग एल्स? समथिंग मोर देन दिस? अफेक्शन। एनीवन एल्स? आपने ठीक बताया, कंपैशन। यस, एनीथिंग एल्स? कोई बुराई नजर नहीं है, कुछ हद तक आपने और अच्छा बताया। डेफिनेशन ऑफ लव इज एक्सेप्टिंग। ये आपने लव की क्वालिटीज बता रहे हो। लव मीन्स अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। अनकंडीशनल, कैसा भी है तुम, कैसे भी हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, नाटे हो, बीमार हो, कैसे भी हो, खराब हो, अच्छे हो, है ना, डिग्निफाइड, आदर के साथ केयर करना। जैसे एक मां, उसका बच्चा कैसा भी है, काला है, गोरा है, बीमार है, कैसा भी है, कहना मानता है, नहीं मानता है, ठीक है, डिग्निफाई कर, फिर क्या करती है? शाम को बोला खाना खा ले, मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर रात में 12 बजे उठता है, मम्मी भूख लगी है ना बहुत जोर से, अच्छा रोटी रोटी रखी ला के देती हूँ, नहीं मम्मी गरम गरम चाहिए, है ना। फिर क्या करती है, क्या करती है? पति बोलेगा तो उसको कहेगी सोजा सोजा आराम से, खाना तो खा ले। पति को खिलाएगी बना के? नहीं खिलाएगी, रात को 12 बजे नहीं खिलाएगी। बेटे के लिए उठेगी, गैस जलाएगी, आटा भी कहेगी, आटा भी नया भिगो के दे तो आटा भी नया भिगोएगी, और उसके लिए रोटी बनाएगी, है ना। और फिर क्या बोलेगी? मेरा राजा बेटा, राजा बेटा, मेरा सूरज है, मेरा चांद है। चांद मान कुछ है नहीं, कहना भी नहीं मानता है ना, नहीं नहीं। तो ये है अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर, इज कॉल्ड लव। ऐसा प्यार भगवान का प्यार है, नहीं, अनकंडीशनल है। डाकू भी जाता है, भगवान ध्यान रखना चोरी, डाका थोड़ा अच्छा लगे, पुलिस पकड़े नहीं, नहीं। चोर भी ये कह के जाता है, नहीं जाता, अनकंडीशनल। चोर है, डाकू है,
डिग्निफाइड, फिर भी हाँ कभी तो सुधरेगा, सुधर जाए कोई बात नहीं, जा तू जा करके फिर क्या क्या कोई बात नहीं, मेरी ब्लेसिंग है तेरे ऊपर, नहीं अनकंडीशनल है डिग्निफाइड। तो जैसे माँ का प्यार कभी कोई नहीं भूलता ना, ऐसे ऐसे भगवान का प्यार कोई नहीं भूल सकता। ठीक है, तो ये प्यार हम सबके अंदर है, ये आत्मा का गुण है। ठीक है, और ये हमारा, ये हमारा आदत है सच बोलना, झूठ बोल के, झूठ बोल के हमको दुख होता है, निडर रहना हमारी आदत है, तो ये हमारे गुण है। ठीक है, दैवी गुण है, तो इससे हम ऑटोमेटिक तनाव मुक्त रहते हैं। ये जीने के लिए, ये खाने के लिए जीते हैं और ये जीने के लिए खाते हैं, जरूरी है वो खाते हैं, ये खाने में स्वाद नहीं ढूंढते, खुशी नहीं ढूंढते, ये समय पर सोते हैं, समय पर उठ जाते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, और इनको मुस्कदा मुस्कुराते रहते हैं। कोई इसको कभी नहीं कह सकता कि आप सिगरेट पी लो, बीड़ी पी लो, शराब पी लो, सदा मुस्कुराते हैं, आदमी कोई ऑफर भी नहीं कर सकता, और ऐसा आदमी सदा हेल्दी रहता है। इनक्योरेबल का मतलब क्या, इन प्लस क्योरेबल, इट डज नॉट मीन इट इज नॉट क्योरेबल, इट मीन्स इट इज क्योरेबल इफ यू गो इन। अगर अपने आप जाके रियलाइज कर लो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, तो यही मेरा मैसेज था आपको। तो अगर आप इसको आप सही ढंग से फॉलो करो, आत्मा मन के माध्यम से शरीर को नरिश करती है सात एनर्जी से। तो जितना आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हो, परमात्मा कौन है, सात गुणों का सागर है, और टीम को पॉजिटिव, मन मना टीम, टीम को पॉजिटिव रखिए, तो आपकी एनर्जी परमात्मा से आत्मा में आती है, आत्मा से बॉडी में जाती है, और सातों एनर्जी जब बॉडी में भर जाती है तो आपके अंग सदा के लिए क्या बन जाते हैं, स्वस्थ बन जाते हैं, और यही एनर्जी आसपास बॉडी के आसपास इकट्ठी होकर आपके आसपास आभा मंडल का निर्माण करती है। सीक्वेंस ऑफ एनर्जी याद करने के लिए फार्मूला याद कर लो, के पी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, के फॉर नॉलेज, पी फॉर प्योरिटी, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस, पी फॉर पावर्स, के पी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए क्या करो, सुबह 4 बजे उठो, 4 से 5 आधा घंटा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, तो क्या होगा, सातों एनर्जी आपके अंदर आ जाएंगी, और आनंद की स्थिति में बैठो, आधा घंटा आनंद में बैठ जाओ, तो 18 हार्मोन्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और पीनियल से निकल आएंगे बैलेंस में, उससे अगले 24 घंटे में आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल सब ठीक हो जाएगा, कम होगा। तो सुबह 4 बजे उठना आवश्यक है, फिर 8 बजे तक चुप रहो, साइलेंस में रहो, बहुत जरूरी है तो बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। टीम को पॉजिटिव रखो। हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा 3:30 बजे उठते हैं, हमेशा रोज, जब से मैं 29 साल से ज्ञान में आया, उठ के मुंह हाथ धो के ब्रश करके अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, 18 हार्मोन्स को बैलेंस में निकालते हैं, आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, फिर ब्रश करके, फिर पुरुष तो पहले करते हैं, स्नान करते हैं, और फिर 8 बजे तक चुप रहते हैं, और 7 से 8 हम परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, उसे मुरली कहते हैं, उसमें 100% पॉजिटिव परमात्मा महावाक्य, तो 100% पॉजिटिव टीम होती है, सत्य होते हैं। तो 8 बजे तक हम यूजली बोलते नहीं है, कोशिश करते हैं चुप रहे, इमरजेंसी अस्पताल से आई तो अलग बात है, उसका फोन आया तो वो अटेंड करते, नहीं तो अदरवाइज चुप रहते हैं, अपनी तरफ से किसी को फोन नहीं करते। तो फिर जो है हम उससे क्या होता है, जो शांति प्यार खुशी मेरे यहां पर आई ना, वो बॉडी के अंगों में आ जाती है, हर सेल में चली जाती है, और फिर हम सारा दिन में सुबह सुबह 45 मिनट सैर करेंगे, परमात्मा की याद में करेंगे, सात्विक सैर करते, सातों गुणों का अभ्यास करते हुए, भोजन शुद्ध सात्विक भोजन समय पर खाएंगे, भगवान की याद में खाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, और प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। तो ये अगर हम करते हैं तो एनर्जी हमारी बॉडी के अंगों से निकल के हमारे आसपास इकट्ठी होती जाती है, इसी को आभा मंडल कहते हैं, और ये आभा मंडल हमारा कवच बन जाता है, शील्ड बन जाती है, ताकि बाहर के किसी व्यक्ति की बुरी भावनाएं, किसी व्यक्ति का कोई गलत, कोई मुझे गुस्सा कर रहा है, वो गुस्सा उसका असर मुझे यहां तक तो आएगा, फिर तो मेरे अंदर नहीं जाएगा, मतलब उसका असर मुझ मेरे पर नहीं होगा। तो ये हमारी रक्षा करता है दूसरों के आसपास के वातावरण से, और उस मेरे वायुमंडल में, आभा मंडल में कोई आ जाए तो वो शांत हो जाता है, उसके अंदर भी प्यार की भावना आ जाती है। तो ये जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी सदा हेल्दी हैप्पी रहेंगे, और क्या होगा, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे, और आपको जो भी रोग हैं मन के या तन के ठीक हो जाएंगे। इसको आप फॉलो करें, और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हमने जो ये प्रोग्राम, यही ये बात है, स्पिरिचुअल केयर, बी नेचुरल, अपने को आत्मा समझ के हर काम करो, जो भी काम करना है, और आत्मा के 7 गुणों का अभ्यास करो। दूसरी बात, मेंटल केयर, 8 बजे तक चुप रहो, हम जो मुरली सुनते हैं आप भी सुनो 7 से 8, तो आपका हार्मोन्स, एड्रेनल हार्मोन बैलेंस में निकलेंगे, और फिर बॉडी के लिए,
फिजिकल केयर में ईट नेचुरल, ज्यादा फल सब्जियां अंकुरित ज्यादा खाओ, दूध पीजिए, रोटी सब्जी खाइए, पराठा पकौड़ा समोसा खाना बंद कर दो, नॉनवेज खाना बंद कर दो, समय पर खाओ, चबा चबा के खाओ, और सुबह सैर करो 45 मिनट सूर्य उदय के साथ, और शाम को सनसेट के पहले आधा घंटा सैर करो, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, और प्रॉपर मेडिसिन डॉक्टर्स की जो भी दवाई दिखते हैं वो समय पर खाओ, ताकि दवाई जल्दी ठीक हो जाए, छोड़ पाएंगे आप। और ये पॉजिटिव एंड हैप्पी लाइफस्टाइल, आप इससे क्या होगा, आप सत्युग में जैसे देवी देवता रहते थे ऐसे आप भी रह पाएंगे। ओम।